तो प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम यहाँ पंजाब में पहले बार बपतिस्मा का एक इंतजाम कर दिया है, बपतिस्मा लेने वाले हैं, तो ये बपतिस्मा के बारे में हम थोड़ा जान जाए कि बपतिस्मा क्या है, जो हम बपतिस्मा लेने वाला है वो क्या है, क्योंकि ये जो बपतिस्मा जो हम लेने वाला है ये शायद आपके लिए पहला बपतिस्मा नहीं रहेगा, क्योंकि आप शायद अपने कलीसियाओं में इससे पहले एक या दो या तीसरा भी लिया होगा। तो आज हम समझना है कि हम क्यों किस लिए बपतिस्मा ले रहा है और ये क्या बपतिस्मा है। तो पहला वचन पढ़ लेंगे, एफेसियों 4:5। एफेसियों 4:5।
इक्को प्रभु, इक्को ने क्या, इक्को बपतिस्मा है।
तो बाइबल में पढ़े तो इक्को बपतिस्मा है, लेकिन लोग इक्को नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसा लेता है, ये क्या बात है, क्यों? इक्को बपतिस्मा रहते वक्त तो इक्को का मतलब क्या है? आजकल इक्को का मतलब किसी का नहीं समझ रहा है। एक बपतिस्मा क्या? एक बपतिस्मा क्यों? एक बपतिस्मा, आपको याद होगा जब हम क्लास कलीसिया के बारे में लिया 17, 18 और 19 में, वहां हम देखा कि कलीसिया एक ही है, सच्चा कलीसिया एक ही है, और उस एक कलीसिया, सच्चा कलीसिया के बारे में हमने पढ़ा 1 तीमोथियुस 3:15।
भाई जे मेनू कुछ चिर लग जावे ता तू जान लवे जो परमेश्वर दे घर विच जेड़ा अकाल पुरख दी कलीसिया ते सच्चाई दा थम अते नी है किस प्रकार वर्तना चाहिदा है।
तो हम देखते हैं सच्चा कलीसिया का नींव, मतलब सच्चा कलीसिया किसके ऊपर करता है, सच्चा कलीसिया सच्चाई के ऊपर करता है, और सच्चा कलीसिया कैसा करता है, मतलब जो 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 कम के बारे में जब हम देखते हैं तो हमेशा सिर्फ सच्चाई में करता है, सच्चाई के ऊपर करता है और सच्चाई से करता है। तो ये सच्चा कलीसिया जो हम देखते हैं एक कलीसिया है, ये परमेश्वर का कलीसिया है। लेकिन ये कलीसिया की बात हम जब लिया 17, 18, 19 में, देख रहा है कि आजकल इतने कलीसियाओं हैं और इतने कलीसियाओं एक एक तो दूसरे के साथ मेल जेल नहीं है, तो लगता है जैसा आजकल वो बाइबल में कि दिया गया एक कलीसिया एकता नहीं है आजकल, क्यों ये सब हुआ? तो तभी हम ढूंढते गया और सच्चा कलीसिया किधर है आज, क्या रोमन कैथोलिक कलीसिया सच्चा कलीसिया है, क्या CNI सच्चा कलीसिया है, क्या पेंटिकॉस सच्चा कलीसिया है, क्या मेथोडिस्ट सच्चा कलीसिया है, या क्या ये छोटे 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 जो कलीसियाओं अभी आता है पास्टर शुरू करते हैं, फेथ का, टैबरनेकल का वगैरह वगैरह नाम नाम का कलीसियाओं शुरू करते हैं, क्या वो सब सच्चा है, क्या छोटा कलीसिया सच्चा है या बड़ा कलीसिया सच्चा है? ये सवाल ढूंढते वक्त हमने देखा कि इस सवाल का जवाब सिर्फ बाइबल में मिलता है, और सच्चा कलीसिया के बारे में हमने प्रकाशित वाक्य 17:14 में पढ़े,
ए लेले दे नाल युद्ध करनगे अते लेला उना उते फतेह पावेगा, इस लई जो ओ प्रभुआं दा प्रभु अते राजा दा राजा है अते ओदे नाल ओ दी जेड़े सदे होए चुने होए अते मातबर हन।
तो यहां देखता है कि प्रभु के साथ एक झगड़ा में आने वाले झगड़े भविष्यवाणी है, प्रभु के साथ रहेगा अपना कलीसिया, और ये साथ रहने वाला कलीसिया के बारे में दिया गया है, ये बुलाया गया है, ये चुने गए हैं और ये वफादार। तो ये तीन कदम हम पार करना है अगर हम महिमा में यीशु प्रभु के साथ बैठेंगे। तो यहां तो देखा कि पहला कदम बुलाए हुए के मतलब क्या है, एक बुलावा मिलता है दुनिया से, विश्वास के अंदर आता है, प्रभु के विश्वास के अंदर आता है, प्रभु से परिचय होता है, प्रभु के वचन से परिचय होता है और हम विश्वासी बन जाता है। लेकिन विश्वासी में से हम पार करके दूसरे कदम पर जाना है और वो है चुने हुए। लेकिन ये दोनों स्थिति में हम वचन में पढ़ते हुए हम देखते हैं कि बुलाए हुए बहुत लोग हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। वचन में मत्ती 22:14।
जो सदे हुए बहुत हन पर चुने हुए थोड़ी
देखो तो ये विश्वासी के अगर हम संख्या देखें तो बहुत से हैं मसीही जो विश्वासी सिर्फ विश्वासी है, लेकिन चुने हुए दूसरे कदम आते वक्त बहुत कम आते हैं, बहुत कम। इसके मतलब क्या है कि परमेश्वर के वचन पढ़ते पढ़ते, परमेश्वर की योजना पढ़ते पढ़ते मालूम होता है कि यीशु पर सिर्फ विश्वास करने के लिए हमारे को बुलावा नहीं है। यीशु पर विश्वास करने के बाद यीशु को पीछा करने के लिए हमारा बुलावा है। ये तो बाइबल बताता है, फिलिपियों पहला अध्याय 29वां वचन, फिलिपियों पहला अध्याय 29वां वचन। फिलिपियों 1:29 कलोसियों के अगले, ये कौन सा है
एफिसियों
के अगले कहलाते हैं।
हाँ, क्यों जो मसीह दे लई तो हाटे उत्ते एक कृपा हुई, पर तुसी ना केवल उस उत्ते नेचा ही करो।
देखो केवल तू उत्ते नेचा नहीं करो, मतलब सिर्फ उनको विश्वास करने को आपको बुलावा नहीं मिला। पढ़ो
तब ओ दे ले दुख भी चलो।
देखो उसके पीछा करना, उसके कदमों में पीछा करना, उसके लिए आपका आपको एक बुलावा मिला है। ये यही तो वचन में पढ़ रहा है और ये बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अभी थोड़ा लोग सोचेंगे कि उनके साथ दुख उठाना, उनके साथ दुख कटना, कैसे दुख उठाना है उनके साथ, उनके चरणों पीछे करने में से ये दुख उठा सकते हैं। ये बात बहुत ही साफ तरीके से हम पढ़ते हैं पत्रस की किताब में, पहला पत्रस 2:21।
क्यों जो तुसी इसे कारण सदे गए हाँ,
देखो सदे गए, इसी कारण आपको बुलाया गया है,
इसलिए जो मसीह भी तुहाडे निमित्त दुख चल के एक नमूना तुहाडे लई छड गया, पर तुसी ओदी पैर उत्ते तुरो।
देखो ऐसी पैर उत्ते करो, मतलब उसके उसके जो जो चरण छोड़ा, उसके जो मतलब कदम छोड़ दिया है, वो एक नमूना की जैसा बन गया हमारे लिए, तो उसी उसी की तरह हम पीछा करना है, हम उसका पीछा करना है। तो वो नमूना हमारे लिए छोड़ दिया है। अभी प्रभु यीशु के कदमों अगर उसके बारे में बात करें, बहुत कुछ बात कर सकता है, लेकिन शुरुआत हुआ यरदन में जब वहां गया और बपतिस्मा लिया, और खत्म हुआ कलवारी में जब क्रूस पे मरा। बीच में बहुत सी बातें हुआ, मतलब यरदन के बपतिस्मा के बाद सीधा जाता रेगिस्तान में 40 दिन लगातार परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, समझते हैं, और उस समय में अपने अपने जो खाने का फिक्र भी नहीं करते, और उसके बाद जब पूरा 40 दिन हो जाता है और सारे बातें वो समझ लेते हैं, वो बाहर आता है और अब शुरू करते हैं उनका सेवा। तो उसी तरह हम भी पीछा करते वक्त हम भी शुरुआत में वो वाचा बांधना है, वो बपतिस्मा लेना है, और उसके बाद हम हमारा पूरा समय और हमारा शक्ति इस्तेमाल करना है परमेश्वर के वचन को बहुत ही गहरे रूप में समझने के लिए। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन गहरे रूप में ना समझते, परमेश्वर हमको इस्तेमाल नहीं कर सकता उनके सेवा में। अगर परमेश्वर के सेवक हम बनना है और परमेश्वर के वचन हम दूसरों के लिए बताना है, तो खुद हमको बहुत ही गहरे रूप में परमेश्वर के वचन को समझना है, और समझने के बाद ही दूसरों को बता सकता है। तो ये बहुत ही जरूरी बात होता है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु के जो जो चरणों और जो कदमों यहाँ तो देख रहा है, शुरू होता है यरदन में। तो आज हम सिर्फ यरदन की बात करेंगे, बाकी के दिनों में हम करेंगे बाकी के जो कदमों, लेकिन आज तो सिर्फ यरदन की बात करेंगे। यरदन में यीशु ने बपतिस्मा लिया, यरदन में जी यीशु ने बपतिस्मा लिया। ये बहुत हैरान की बात हुआ, किसके लिए बपतिस्मा यहोना का। बपतिस्मा यहोना वहां यरदन में अनेक यहूदियों को बपतिस्मा दे रहे थे, और यहाँ देख रहा है कि यीशु आते हैं उनके पास, मेरे को बपतिस्मा दो। उसको बहुत आश्चर्य हुआ, क्या बात करते हो, अगर बपतिस्मा की बात है हम दोनों में से, तो आप हमारी को बपतिस्मा देना है, क्योंकि इस बात में हम तो बपतिस्मा दे रहे हैं पाप के माफी के लिए, और अगर पाप की बात देखिए तो आपके अंदर जरा भी पाप नहीं है, आप पवित्र है। और अगर पाप का जरा भी रहना है हम दोनों के बीच में, वो मेरे में है। तो बपतिस्मा यूहन्ना बोला, अगर आप बपतिस्मा की बात कर रहे हैं तो आप मेरे को बपतिस्मा देना है, लेकिन प्रभु बोलते हैं नहीं नहीं छोड़ो, रहने दो। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको कृपा करता हूं कि मेरे को बपतिस्मा दे दो। सारे नीति को स्थापित होने के लिए आप मेरे को बपतिस्मा दो। ये बात तो हम पढ़ लेंगे अभी, मत्ती में 3:14।
पर यूहन्ना ने यह कह के उसनु रोकिया, भाई मेनू तो तेथो बपतिस्मा लेन दी लोड़ है, अगे तू मेरे को आया है।
15।
पर यीशु ने उन्होंने उत्तर दिता, हुण दे, क्योंकि तानू
रहने दो,
तानू जोग है जो सारे धर्म नू इसे तरह पूरा करिए।
सारे धर्म को पूरा करने के लिए, क्या धर्म को पूरा करने के लिए? हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा, यूहन्ना के पास उस समय को इतने गहरे रहस्य जो सुसमाचार के युग में होने वाले हैं, बपतिस्मा यूहन्ना समझने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि बपतिस्मा यूहन्ना यहूदी के युग वाले हैं। तो सुसमाचार युग की बात पर पवित्र आत्मा मिलने के बाद ही मालूम हो सकता है। बपतिस्मा यूहन्ना तभी पवित्र आत्मा जो सुसमाचार युग में देने वाला है वो प्राप्त करने की गुंजाइश नहीं था। तो पिछले यीशु बोलता है सारा धर्म पूरा करने के लिए ये होने दो। क्या धर्म पूरा होने के लिए? इसका मतलब क्या है कि यीशु मालूम था कि उनके पीछे एक शरीर आएगा, मतलब उनके पीछे थोड़े लोगों आएंगे सुसमाचार के युग में जो इनके चरणों पीछा करेंगे। उन लोगों के लिए यीशु सर बन जाएगा। तो सर बनने के समय में राह दिखाना है यीशु। तो यही बात तो यूहन्ना को बोला कि मैं राह दिखाना है पीछे को जो लोग आएंगे। तो किधर से शुरू होता है मेरा रास्ता? यर्दन में, बपतिस्मा में। तो ये बात तो यहाँ बताया। अभी ये बात तो आज हमने पढ़ लिया है पत्र से, नमूना छोड़ के गया। नमूना शुरू होता है यर्दन में। चलो, यीशु जो लिया बपतिस्मा में, यीशु ने कुछ बात किया बपतिस्मा लेते वक्त? वहां तो कुछ नहीं दिया कि यीशु ने क्या बात किया, लेकिन एक दूसरे किताब में, हिब्रानियों की किताब में 10:7 में हम पढ़ते हैं कि यीशु जब आया था बपतिस्मा लेने के लिए, उनके दिल में एक बात था। तो उसके दिल की बात अभी पढ़ेंगे, दिल में क्या बात था। 10:7,
तद में आख्या, देख मैं आया हाँ, हे परमेश्वर भाई तेरी इच्छा नू पूरी करा, जिवें पुस्तक दी प्रति विच मेरे विखे लिया हुआ है।
कुछ समझा आप? अभी क्या बोल रहा है प्रभु कि पिता मैं आज अब आपकी इच्छा करने के लिए आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? आज से मेरा इच्छा बंद, आज से मेरा इच्छा मर गया, आज से मैं अपने आप को इनकार करने वाला है, इसके बाद मैं तेरा इच्छा करेंगे। यही तो यीशु बोला। तो ये एक बादशाह बना, प्रभु आके एक बादशाह बना दिया। ये है बपतिस्मा। ये बपतिस्मा का जो तस्वीर पानी में रहता है। पानी में रहते वक्त क्या देखते हैं कि यीशु पानी में खड़ा था और बपतिस्मा यूहन्ना उसको पकड़ा, पीछे उसको लेटाया और लेटने के बाद उसको दोबारा खड़ा कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? ये धीरे धीरे एकाएक नहीं, धीरे धीरे पिता परमेश्वर के इच्छा के अंदर डुबाया जाएगा। डुबाने के बाद पिता परमेश्वर दोबारा उसको मरने दम तक डुबाएगा, उसके बाद उसको नया जीवन में खड़ा कर देगा। ये तो यीशु के लिए एक बपतिस्मा का एक चिंता। उसी तरह हमारे को भी होगा। अभी ये बपतिस्मा जो हम लेने वाला है ये सिर्फ 5 मिनट का होगा, 2 मिनट का होगा, लेकिन ये पूरा नहीं है, ये तो सिर्फ एक चिन्ह है। असली बपतिस्मा यीशु बताता है लूका में 12:50।
पर मैं एक बपतिस्मा लेना है अते ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਰਹਾਂਗਾ,
ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਆਜ ਸੇ ਮਰਨੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਵਾਚਾ ਬਾਂਧਾ। ਕਭੀ ਤੋ ਅਭੀ ਆਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਕਾ ਨੀਂਦ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਅਭੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਡਾਲ ਕੇ ਦੋ ਜੋ ਨਾ ਯਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਬਾਤ ਅਭੀ ਹਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੋਏਗਾ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਕੇ ਲਈ, ਕਿ ਕੈਸੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਛਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੁਬਾਏ ਜਾਏਗਾ, ਡੁਬਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਤੋ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਰਕੇ ਹਮ ਹਮ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਹਮ 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 ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਕੇ ਜੋ ਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਆ ਜਬ ਵੋ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾ ਕੋ ਇਨਕਾਰ ਕੀਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਕਾਰ ਕੀਆ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਕਾ ਇੱਛਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਲੀਡਰ ਕੋ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ, ਨੇਤਾ, ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਔਰ ਲੀਡਰ ਸਰਤਾਜ, ਕਿਆ
ਸਰਦਾਰ,
ਸਰਦਾਰ ਯਾ ਸਰਤਾਜ ਕੇ ਤਾਂ
ਸਰਦਾਰ
ਜੋ ਆਗੇ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਆਗੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਹੋਤਾ ਵੋ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੇ ਲੋਕ ਉਸਕਾ ਪੀਛਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆ ਕਿਧਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨੇ ਮੈਂ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੋ ਕਿਆ ਕਿਆ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਨਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਵਕਤ ਬੋਲਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੀਛਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਰੂਸ ਔਰ ਸਲੀਬ ਆਪ ਉਠਾਓ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੀਛਾ ਕਰੋ। ਯੇ ਮਤਲਬ ਅਭੀ ਹਮ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਤੀ 16:24,
ਤਦ ਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ।
ਅਭੀ ਸਲੀਬ ਜਾਂ ਕਰੂਸ ਕਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਰੂਸ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਅਸਲੀ ਕਰੂਸ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸਲੀ ਕਰੂਸ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਆਪ ਦੇਖੇਂਗੇ ਕਰੂਸ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗਾ, ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਘਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਯੇ ਪਰ ਕਰੂਸ ਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਕਰੂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਵੈਸੇ ਆਏ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਤਾ ਹੋ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਗਰੋਂ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਪਨੀ ਹੋਤੇ ਔਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰਹੇਗਾ ਗਾੜੀ ਕੇ ਲਿਏ, ਕਰੂਸ ਕਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਾ ਅਗਰ ਅਸਲੀ ਕਰੂਸ ਉਠਾਨੇ ਪੜਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੂਸ ਉਧਰ ਇਧਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕਰੂਸ। ਤੋ ਯੇ ਹਮ ਜਾਣਤਾ ਹੈ, ਯੇ ਤੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੋਸਤੋ ਕਿਆ ਸੋਚਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਰੂਸ ਉਠਾਓ ਕਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਪਸ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਕਰੂਸ ਆਪਣੇ ਟਾਂਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲੇ ਕੇ ਗਰਦਨ ਮੈਂ, ਤੋ ਯੇ ਯੇ ਸੋਚਤਾ ਹੈ ਕਰੂਸ ਉਠਾਨਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਰੂਸ ਨਹੀਂ ਉਠਾਨਾ ਹੈ। ਕਰੂਸ ਉਠਾਨੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ? ਕਰੂਸ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ? ਕਰੂਸ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਲੀਦਾਨ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਰੂਸ ਉਠਾਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਉਠਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਬਲੀਦਾਨ ਉਠਾਓ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਉਠਾਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋ ਪੀਛਾ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਯੀਸ਼ੂ ਕਾ ਚਰਨੋ ਪੀਛੇ ਕਰਤੇ ਵਕਤ ਹਮ ਬਲੀਦਾਨ ਉਠਾਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਯੀਸ਼ੂ ਕੇ ਪੀਛੇ ਕਰਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਤੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਾ ਮਤਲਬ ਯੀਸ਼ੂ ਬਤਾਇਆ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਕਿ ਉਨਕੇ ਚਰਨੋ ਪੀਛੇ ਕਰਨਾ ਵਹੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਆਪਕੋ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਕੇ ਪਾਸ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਯਾਕੋਬ ਔਰ ਯਹੋਨਾ ਕਾ ਅੰਮਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਕਾਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹੈ ਨਾ ਯਾਕੋਬ ਔਰ ਯਹੋਨਾ, ਦੋਨੋ ਆਪਕੇ ਅਗਲ ਬਗਲ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਦੋ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ। ਤਭੀ ਬੋਲਾ ਤੁਮ ਕਿਆ ਪੁੱਛਤੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬੋਲਤਾ ਹੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਮ ਵੋ ਬਾਤ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਮ ਜੋ ਪਿਆਲਾ ਮੈਂ ਪੀ ਰਹਾ ਹੂੰ ਵੋ ਆਪ ਪੀਣਾ ਹੈ और जो बपतिस्मा मैं ले रहा हूँ वो आप लेना है। वचन में पढ़ लो मार्कुस 10वां अध्याय 38वां वचन। 38
यसु ने उन्हां नु कहा, तुसी नहीं जान दे जो की मांग दे हो, भला ओ प्याला जेड़ा मैं पीना है तुसी पी सकते हो, या ओ बपतिस्मा जेड़ा मैं लेना है तुसी ले सकते हो।
समझा, ये है एको बपतिस्मा, ये है वचन का एको बपतिस्मा, एक मात्र बपतिस्मा यही है। जो बपतिस्मा यीशु लिया उसी बपतिस्मा जो कोई यीशु पीछा करने को सोच रहा है उस बपतिस्मा लेने के लिए परमेश्वर यीशु प्रभु पुकार दे रहा है, यही है बपतिस्मा। ये एक वाचा, ये एक वरदान जो हम करते हैं पिता परमेश्वर को। क्या वरदान करते हैं? कि अपने आप इनकार करें, आज से मैं अपना इच्छा नहीं करूंगा, आज से पूरा पूरा तुम्हारा इच्छा करूंगा, तुम्हारा इच्छा मैं सामने रखूंगा और आज से मेरा इच्छा बंद करेंगे। ये बोलने बहुत आसान है, करना बहुत 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 मुश्किल। लेकिन पहला से ये वाचा बांधना है, और वाचा बांधते वक्त झूठा मत होना है। एक वाचा बांधता है और बाद में कुछ भी करता है, ऐसा नहीं करना है। वाचा जब बांधता है तो सच्चे दिल वाले होना चाहिए, वाचे के मुताबिक जीना है। तो ये वाचा जो है ये महिमा वाले वाचा है, ये जो है वाचा ये एक रहस्य है। वचन में पढ़े भजन संहिता 25वां अध्याय और 14वां वचन। भजन संहिता 25:14
यहोवा ता यहोवा दा भेत उस दे भय मनण वालियां दे लई है अते ओ अपना नेम उन्हां नूं दसेगा।
क्या बोलता है वाचा? वाचा के लिए
यहोवा का भय उनके मानने वालों के लिए है, और वह अपना नाम उन्हें उन्हीं को बताएंगे।
वह अपना नेम, बुरा ट्रांसलेशन है, वे अपना वाचा उनके ही बताएंगे। तो ये नाम नहीं है, ये वाचा है, वरदान। नेम तो
नेम
नेम बोला, नेम और चीज
होती है। नेम का मतलब क्या है?
नेम जैसे
जैसा आपका नाम है, बंटी का नाम है।
नहीं नहीं,
नेम
वो तो नाम हो गया, नेम
बाबा शायद।
नहीं, ये पंजाबी में नेम का मतलब क्या है? नेम का मतलब वाचा। क्या
वाचा
ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो है रहस्यमंद वाचा। तो वाचा नेम
पंजाबी में किसी के साथ नेम बांधना।
हाँ,
आप मेरे घर में आओगे, बोलोगे अगर मैं बलियम इतने बजे तुम्हारे घर में आएगा, एक नेम बांध,
नेम बांधते हैं,
वही बात है।
वही वही, तो नेम का मतलब है वाचा। तो बराबर बात है वाचा, और एक रहस्यमंद वाचा है। परमेश्वर बताता है अपने लोगों के लिए जो उनसे डरता है। ये वाचा के बारे में और जानकारी भजन संहिता 50:5 भजन संहिता 50:5
मेरे संतान मेरे को इकट्ठा करो जिन्हें मेरे नाल बलिदान दे राही नेम बनते हैं।
दोबारा नेम देखो, मेरे साथ बलिदान का नेम बनाते हैं। जब हम ये नेम मतलब वाचा परमेश्वर के साथ बांधने को जाते हैं, और वो भी सच्चा दिल में, तो हम बदल के अभी परमेश्वर के नजरों में हम बन जाता है संतान, संत, परमेश्वर के संत। संत का मतलब क्या है मालूम? जो वाचा बांधता है परमेश्वर के साथ, और वो वाचा बांधे हुए लोगों का नाम है संत। तो ये है आपको जानने के लिए कि ये वाचा और ये बपतिस्मा का मतलब क्या है। ये एक वाचा है, और इस वाचा को बांधने के लिए प्रभु यीशु हमारे को एक आमंत्रण दिया है। जो कोई मेरा पीछा करने को चाहते हैं अपने आप इनकार करो। यही बात पौलुस रसूल बात करते वक्त कोई दूसरे तरीके से बात किया, लेकिन वही बात है, कोई और भी शब्दों इस्तेमाल किया ताकि हम और भी गहरे समझें। रोमियो 12:1
सो हे प्रभु, मैं परमेश्वर दिया रहमता दी खातर ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ।
ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹ ਪੌਲਸ ਉਸੀ ਬਾਤ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਉਧਰ ਬੋਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਕਾ ਕ੍ਰੂਸ ਮਤਲਬ ਸਲੀਬ ਉਠਾਓ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੀਛਾ ਕਰੋ ਵਹਾਂ ਬੋਲਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਯਹੀ ਬਾਤ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਂ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਲੋਕ ਆਪਕੋ ਯੇ ਮੌਕਾ ਮਤ ਛੋੜੋ ਯਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰੋਂ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜੋ। ਸ਼ਰੀਰ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜੀਵਨ ਹਮਾਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਵੋ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜੋ ਔਰ ਆਪ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜੋ ਯੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਜੋ ਕਿਆ ਹੈ ਵਚਨ ਵਚਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬਾਰਾਂ ਇੱਕ ਰੋਮੇ ਬਾਰਾਂ ਇੱਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ
परमेश्वर का रहमता परमेश्वर का रहमता क्या है मालूम कि हम इस समय में जब हम इस काम करने के लिए सामने आते हैं और जब हम अपने शरीर अर्थात हमारा मानसिक जीवन बलिदान करने के लिए आते हैं हमारा जीवन परमेश्वर के नजर में पवित्र है। ये परमेश्वर का रहमता है। अब पुराना नियम में इतने परमेश्वर के सेवक थे अब्राहम भविष्यताओं ईसाया यरेमिया दानियल कोई भी पवित्र नहीं था क्योंकि असली पवित्रता तब प्रकट हुआ जब यीशु मरा और यीशु के लहू के जरिए से हम हमारा पापों को असली क्षमा मिला और तभी हम पवित्र बना परमेश्वर के नजर में। तो ये नजर क्या ये बताता है कि हम अपना जो बलिदान पवित्र बलिदान चढ़ाने का मौका दिया ये परमेश्वर का रहमता है। परमेश्वर का रहमता कि पवित्र बलिदान चढ़ाने को परमेश्वर मौका दे रहा है। पढ़ आगे बढ़ो आगे बढ़ो वही वचन
माता अगे थोड़े बेनती करता हाँ भाई तुम अपन दहिया जूंदे पवित्र परमेश्वर भाउंदा बलिदान करके चढ़ाओ।
देखो बलिदान करके चढ़ाओ तो मतलब आपके देह हो अपने अपने शरीर हो अपने मानसिक जीवन आप बलिदान चढ़ाओ तो ये इसका इसको कहता है जीवित बलिदान। जीवित बलि है आप तो देखा होगा कोई भी बलिदान जीवित नहीं रहता। अगर कोई बलिदान चढ़ाता है पहला वो बलिदान का जो जानवर या चीज क्या करता है मार डालता है टुकड़ा टुकड़ा करता है और बाद में उस टुकड़ा लेके वेदी के ऊपर डालता है और जलाता है। लेकिन ये जो बलिदान यहाँ चढ़ा रहे हैं हम लोग एक तरफ मरे हुए होंगे सचमुच मरे हुए नहीं हम मार डालना है हर एक दिन लेकिन एक तरफ जीवित ही रहेंगे मतलब हमारा इच्छा जो हम मार डालते हैं सचमुच मरता नहीं अपना इच्छा उभरते रहेंगे उभर के आएंगे उभर हम हर दिन
संसार के लिए मरना
नहीं मैं हर एक जो चीज जो हम पुराने दिमाग में पुराने इच्छे में रखते थे वो सारे के लिए हम मरने को तैयार होना चाहिए। मरने का मतलब है बिल्कुल वो उसके ऊपर कोई इच्छा नहीं रहना। तो ये परमेश्वर से हम वाचा बांधता है कि हम अपने आप को इनकार करेंगे और क्रूस उठाएंगे। ये बात बहुत ही एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये इच्छा के माउथ में और ये बलिदान के जीवन में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप समझना है कि हम मरने के लिए परमेश्वर बुलाता है। क्या मरता है हमारा इच्छा मरता है लेकिन एक और बात इधर है हमारा मौत सिर्फ मौत नहीं है हमारा मौत एक तरीके से मरना है। उस तरीका हम पढ़ेंगे अभी रोमियो 6:3
अथवा तुसी एक गल तो अनजान हो भाई साडे विचों जिन्हां ने मसीह यीशु दा बपतिस्मा लिया ओह दी मौत दा बपतिस्मा लिया।
देखो मौत की बपतिस्मा लिया इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु की मौत अपने पाप के लिए नहीं था बलिदान के मौत था। अभी हम पापी है और अगर हमारा पाप का का जो हिसाब हमारा सामने खड़े तो हम अगर मरता है तो हमारे पाप के लिए मरता है, लेकिन हम अपने पाप के लिए नहीं मरना है। तो अपने पाप के लिए कब नहीं मरता है? जब हमारा पाप हमारे सामने नहीं करता है। तो हमारा पाप कब हमारे सामने नहीं करता है? जब हर रोज हर वक्त हमारा पाप जो हम देखते रहते पता करते हैं और क्या करते हैं उसके लिए क्षमा मांगते रहते। ये क्षमा मांगने के काम है, शुरुआत बहुत जोश में करके हम सोचेंगे नहीं मैं हम पवित्र रहना हमारा कोई भी पाप हमारे सामने नहीं करना है। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि इस दुनिया इतने गिरे हुए हैं और हमारे बीच में हमारा भाइयों भी जाते जाते हम देखेंगे कि थोड़े आलसी होंगे, थोड़ा टेक इट इजी, कॉम्प्रोमाइज, समझौता करने वाले मन में आता है, तो हम भी धीरे धीरे वो अति पवित्रता जो बहुत जरूरी है थोड़ा कम होते जाएंगे। वो बहुत ही खतरनाक बात है क्योंकि हमारा पाप तुरंत हम पहचानना है, तुरंत उसको परमेश्वर को हम माफी मांगना है और उसको दुलाना है। ऐसे ही करते आए तो हमको दो चीज प्रकट होता है। एक तो परमेश्वर के दया से हमारा स्थिति हमेशा पवित्र रहेंगे क्योंकि परमेश्वर हमको क्षमा करते आएंगे, और दूसरे बात है आप मालूम हो जाएगा आप कौन सी रास्ता में आप कमजोर है, आप मालूम हो जाएगा क्या आंख में कमजोर है, क्या दिमाग में कमजोर है, क्या मुंह में कमजोर है, कौन सी रास्ता में कमजोर है आप मालूम हो जाएगा क्योंकि आप हिसाब रख रहे होंगे, आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं किधर किधर आप पाप कर रहे हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं किधर किधर पाप कर रहे हैं आपको मालूम हो जाएगा मेरे को ये कमजोरी है, मेरे को वो कमजोरी है, इसके ऊपर मैं लड़ना है, मैं जंग करना है, इसको मैं रास्ता नहीं छोड़ना हमारे अंदर। तो यार ये बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारा माउथ, मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज जो वाचा आप बांधने वाला है और जो माउथ आप मरने वाला है, ये साधारण दुनिया को मरते हुए माउथ नहीं, दुनिया जो माउथ मरता है वो अपने पाप के लिए है। हमारा माउथ यीशु की जैसा होना है, हमारा माउथ यीशु के जैसा होना तो हमारे हिसाब में हमारा पाप नहीं करना है। सामने सोच लो कि कितने बड़ा जंग होगा वो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद में रख लो कि अगर आप कोई बलिदान कर रहा है पवित्र बलिदान होना है, अशुद्ध बलिदान परमेश्वर नहीं कबूल करता है, शुद्ध बलिदान। तो शुद्धता रखने के लिए आप बहुत कुछ करना है, बहुत ही सावधानी से आप चलना है, बहुत ही सावधानी चलना है आपके कॉलेज में, आपके रास्ते में, आपके आते जाते वक्त में, आपके दोस्तों के बीच में। वो दोस्तों तो क्या 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 की बात करेंगे, क्या क्या की शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या की मजाक करेंगे, क्या उसके में आप मिल लेंगे? अगर आप उसमें मिल लेते तो परमेश्वर आपसे पूछेंगे क्या ये सब मजाक है मेरा बेटा तेरे लिए, क्या ये सब अच्छी बात है मेरा बेटा, आप ये कबूल करते हैं, इसको न्याय बोलते हैं, इसको पवित्रता कहता बेटा, परमेश्वर पूछेगा। तो वो नया दिल जो अंदर आया था बोलेगा नहीं ये बुरा है, ये कचड़ा है, ये परमेश्वर को नफरत करता है। तो आप धीरे धीरे इस पवित्रता के मार्ग में चलते वक्त आपके पुराने दोस्तों से भी आप दूर हो जाएगा। ये मैं बताता हूँ ये होता है क्योंकि दोस्तों के साथ रहना कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि दोस्त तो बदलने वाला नहीं
है, हम अच्छे ही लगे उनको।
दोस्त तो बदलने वाला नहीं है, ना तो दोस्त तो बदल सकता है। तो धीरे धीरे दोस्त को भी आपके ऊपर दोस्ती भूल जाएगा क्योंकि तुम तो ना तुम उनके साथ उनके जैसे हैं ना वो तुमके जैसे बना सकता है। तो धीरे धीरे राह क्या हो जाता है, बंटवारा होके चले जाएंगे। ये सब आप फिक्र नहीं करना। आपको याद होगा प्रभु यीशु ने बोला अगर आपके हाथ اگر آپ کے ہاتھ غلطی کرتا ہے اس ہاتھ کیا کرنا ہے؟ کٹوانا ہے. ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ دوست. دوست اگر ہم ایک دوسرے سے دوستی شروع کرتے ہیں کیا بولتا ہے؟ لو میرا پاؤں بولتا ہے, لو میرا ناک بولتا ہے, کہتا ہے اسکیمو والے لو ناک دیتا ہے ایسا ناک کرتا ہے ایسا کہتا ہے. یہ کیا کہ ناک نا ناک میں ایسا کرتا ہے اسکیمو کو ہینڈ شیک ہے. لیکن عام دور سے ہم کیا دیتا ہے؟ ہاتھ دیتا ہے. پیپر میں پڑھ کر ٹی وی میں پڑھ کر پاکستان اپنے ہاتھ بڑھایا بھارت کو, کیا مطلب ہے؟ دوستی میں آ رہا ہے. تو جب آپ کے دوستی کے ماحول میں کسی آپ کو غلط راستہ میں لے کے جا رہا ہے ایسا دوستی نہیں چاہیے. نہیں بردر, بچپن سے میرا دوست ہے بردر, ایک ہی پلیٹ سے کھایا بردر, کیسے چھوڑوں؟ نہیں کچھ فائدہ نہیں ہے. چلو اس کو پکڑو اور جاؤ, آپ بالکل ناش میں جائیں گے. کیونکہ اتنے سچائی جانے کے بعد, اتنے پوتر جانے کے بعد, اتنا بڑا موقع راجا ہونے کے لیے بلاوا ملنے کے بعد آپ ایک دوستی پکڑ رہا ہے جہاں کچھ فائدہ نہیں ہے, جہاں دنیا داری ہے, جہاں غلط غلط کیا بولتا ہے مزہ ہے, غلط غلط باتیں ہیں. کیا فیصلہ کر رہا ہے یہ؟ کیا فیصلہ کر رہا ہے؟ تو دھیرے دھیرے معلوم ہو جائے گا نہیں یہ فیصلہ غلط ہے. نہیں 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 تو ہم دور ہونا چاہیے. تو دھیرے دھیرے جوش آئے گا, چل باہر جائیں گے. نہیں یار, نہیں یار, میرے کو بزی ہے یار, چھوڑ یار, کیا پکتے ہو, آؤ یار, چلو چلو باہر میں بیٹھتے. میرے کو چلو نیا بات, ارے آؤ یار نیا بات, ادھر جا کے بیٹھیں گے. تو بیٹھتا ہے گاڑی کے اوپر, جاتا ہے باہر میں بیٹھتا ہے اور بولتا ہے کیا, چلو بول اس کو ڈالو یار, اس کو کتنا کتنا تم کو ایک بائک میرے کو, چل بول کیا یار, بات بات بک 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 کر رہا ہے, کیا 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 نیا بات ہے؟ باہر میں بیٹھ کے بھگوان کے بارے میں بات کر سکتا ہے. تو دھیرے 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 معلوم ہو جائے گا نہیں یہ نہیں سیٹ ہوگا, آئندہ سے سیٹ نہیں ہوگا. اگلے بار جب دوست ادھر آتا ہے ادھر چھپے ہیں گے گھر کے اندر, بولو نہیں ہے, جاؤ جاؤ جاؤ, مت مت بول مت بول گیا ہم ادھر ہے. اور دھیرے 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 وہ دوستی کٹ جاتا ہے. کیونکہ یہ ہے راستہ, یہ کڑوا راستہ ہے لیکن یہ مہیما کا راستہ ہے. تو بہت ضروری ہے سارے باتیں, تو آپ یاد میں رکھ لیجئے کہ جو ہم باچا باندھتے ہیں پوترتا کے لیے, پوتر بلیدان چڑھانے کے لیے, اور پوتر بلیدان چڑھانے اتنے آسان نہیں ہے, اس کے لیے دن ب دن آپ کام کرنا پڑے گا, بہت کام کرنا پڑے گا اور بہت ہوشیاری سے دیکھنا پڑے گا. آپ کا چال چلن آپ ہی دیکھنا ہے, کوئی اور نہیں دیکھے گا, آپ دیکھنا ہے. اور آپ سچے دل سے بولنا ہے کہ میں کیسے چل رہا ہے, میں اچھا چل رہا ہے یا برا چل رہا ہے, آپ ہی پتا کرنا ہے. آپ ہی آپ کا نیائے ادھیپتی ہے. اور اس لیے تو ہم اس طرف ہم بالکل مرے ہوئے ہوں گے اور پربھو کی جیسے مرے ہوئے ہوں گے. وچن میں پڑھو کلوسیوں 3:3,
کیوں جو تسی موئے اتے تہاڈے جیون تہاڈا جیون مسیح دے نال پرمیشور وچ گپت ہویا ہے.
دیکھو تو ہم مرے ہوئے ہیں, ہم مرے ہوئے کیونکہ کلیسیا کو بولتا ہے کہ تم مر گئے ہے. کیا مر گیا ہے؟ یہ اس طرح ہم مر گیا ہے. ایک طرف تو ہم جی رہے ہیں لیکن ایک طرف تو ہم مر گئے ہیں اس دنیا کے لیے, اس دنیا کے باتوں کے لیے, اس دنیا کے جو چال چلن کے لیے ہم مر گیا ہے. دھیرے دھیرے مر جائے گا. مرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو آدمی مر جاتا ہے کیا وہ کچھ دیکھ سکتا ہے؟ کیا وہ کچھ بول سکتا ہے؟ کیا وہ کچھ سن سکتا ہے؟ کیا وہ کچھ سوچ سکتا ہے؟ نہیں, مرے ہوئے آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح آپ کا سوچ اور بات اور سننے اور کرنا سب اس طرف کی باتوں کے لیے کیا ہونا ہے؟ بند ہونا ہے. مرنا یہ تو بہت ہی بڑا چیلنج ہے, بہت ہی بڑا جنگ ہوگا آپ کے لیے. لیکن یہ جنگ میں اگر آپ لڑ جاتا ہے اور جیت جاتا ہے آپ ہیرو بن جائے گا اتنے لوگوں کے لیے. آپ نہیں جانتے ہیں کہ سب سے بڑے ہیرو کلیسیا ہے. آج کل لوگ تو پکچر میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, ناچتے ہیں, گاتے ہیں, لڑتے ہیں اور اسی طرح ہیئر اسٹائل سب بناتے ہیں. لیکن یہ جو ہیرو, آج کی ہیرو ہے, कुछ भी फायदे की नहीं है। वो जब राज्य में उठ के वापस आएंगे, एक एक तो शर्मिंदा होगा कि क्या क्या किया और क्या क्या लोगों को दिखाया। लेकिन असली हीरो होगा कलीसे वाले, जो जिनकी जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक संघर्ष, एक एक लड़ाई आज आज कैमरा लेते जा रहा है, कैमरा लेते जा रहा है। आप जानते हैं कैमरा लेते जा रहा है? वचन पढ़ो, मैं बताता हूँ। मती में पांचवा अध्याय 16वां वचन, कैमरा चल रहा है अभी हर एक कलीसिया वाले की जिंदगी में। 5:16
ऐसी तरह तुहाडा चानन मनुखा के सामने चमके, ता जो ओ तुहाडा शुभ कर्म वेख के तुहाडे पिता दी जेड़ा स्वर्ग विच है बड़ियाई करन।
आज हम अच्छा करे, काम करे, लोग पहचानता और परमेश्वर को प्रशंसा करता है? नहीं। ये वचन में दो भाग है। अभी हमारे अंदर का जो सच्चाई हम प्रकट करना है हमारा जीवन में, हर दिन, हर वक्त, हर स्थिति में। लेकिन आज लोग नहीं देखेंगे ना पहचानेंगे। जब 1000 साल युग में पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर डालते, तब उसके समझदारी के अंग खुलेगा। खुलने के बाद हमारा जिंदगी उसको दिखाए, उनको दिखाएंगे, और वो देखते के बोलेगा, हम जो फंसा देखो कैसे जीत रहा है, कैसा संघर्ष हो रहा है। एक सीन होगा, एक भाई, उसके घर में बाप है, बाप तो पीने वाले आदमी है, आता है, गाली बोलता है, ऐसा वैसा करता है, और भाई तो बहुत धीरज से डैडी नहीं डैडी नहीं डैडी क्या डैडी बैडी थप डैडी बैडी क्या की बोल रहा है, माथा तुमको नहीं डैडी नहीं डैडी ऐसा नहीं कर, आएगा मारेगा, क्या चीज चलते रहेगा। उस सीन में देखेंगे कि वो कलीसिया वाला कितने धीरज से और कितने प्यार से सहते जाते मार भी खाते हैं, अपमान भी खाते हैं, और उसके अपने चमक दिखाते हैं, चमकते हैं। ये एक सीन बताया, कितने सीन होगा, कितने सीन है घर में, औरतों के साथ, मर्दों के साथ, भाइयों के साथ, माता पिता के साथ, हर एक के साथ ये होते रहेंगे। ये सारा जो तस्वीर अभी जो हमारे जिंदगी में जाता है, ये अनोखी बात, सारे बात दिखाएगा सारा दुनिया को। दुनिया देखेंगे और बोलेंगे, अरे इतने होने के बाद भी ये संतान परमेश्वर की चरणों में के राहों में चला। हम अगर उनकी जगह में रहते हम तब भी छोड़ देते हैं, और ये लोग अभी भी विश्वास करते हैं परमेश्वर को, अभी भी विश्वास करते हैं और पीछा करते हैं। क्या बात है, क्या विश्वास है, क्या इतने संकट के बीच में इतना विश्वास दिखाता है। ये तो उस समय ये लोगों दुनिया के लोगों को देख के पहचान के किसको प्रशंसा करेगा? पिता परमेश्वर जो ऐसा चलाया इन लोगों को इस समय में। तो सच्चे हीरो बनने के लिए आप और हम बुलावा है। मेरे उदाहरण अगर ले तो मैं तो फिल्मों में हीरो बनने के लिए गया, परमेश्वर नहीं छोड़ा। मैंने बहुत रोया, मैं सोचा क्या परमेश्वर मेरे को अपमान कर रहा है, मेरे को इतना, मैं तो हीरो बनना है, बहुत लोग हमारा फैन होना चाहिए, मैं स्टाइल मारना है, वो मेरा स्टाइल मारना है, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन परमेश्वर सोचा अच्छा मेरे लिए, और मेरे को मौका ही नहीं दिया, अभी यहाँ लाया असली हीरो बनने के लिए। कभी सोचा भी नहीं। तो ये बात तो आप याद में रखना, ये बहुत ही बड़ा बुलावा है। ये जो हमारा जिंदगी, एक एक मिनट का जिंदगी, एक एक दुख, एक एक आंसू, एक एक संघर्ष, एक एक जंग कैमरा लेते जा रहा है। ये सारे दुनिया वाले को दिखाएंगे, एक 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 एक, और ये सारे सबक होंगे इस दुनिया को। गुस्से की बात में, जलने की बात में, झूठ की बात में, गलत गलत आदतों की बात में, हर एक बात जो दुनिया फंस रहा है, जीत देखेगा एक एक की जिंदगी में, एक एक की जिंदगी। कितने बड़े बात है देखो। तो ये बात तो हम देख रहे हैं कि मौत, हमारा मौत कैसा होना है, हमारा मौत बिल्कुल इस दुनिया की चीजों के लिए हम मरना है, और इसी तरह ही परमेश्वर का इच्छा करते करते हम वो राज्य का को जो महिमा हम पा सकते हैं। वचन में पढ़ लो मत्ती 7वां अध्याय 21वां वचन।
ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ, ਬਲਕਣ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ 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 ਕੌਣ ਬੋਲਤਾ ਅਭੀ, ਕਿਉਂ ਦੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਮਾਰਾ ਮਸੀਹ ਮੇਂ ਦੋ ਦੋ ਬਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਰੀਅਮ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਬੋਲਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ। ਤੋ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲ ਕੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਰਾਜ ਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਰਾਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਇੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਇੱਛਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਰੋਮੀਓ 8:29 ਵਚਨ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਭਾਈ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਨ, ਭਾਈ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਹੋ।
ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਇੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾ ਰਾਹੋਂ ਮੇਂ ਚਲਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਔਰ ਸਵਰੂਪ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸਕੋ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਰਾਜ ਕਾ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਸਮਝਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਅਭੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਜੈਸੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੈਸੇ ਕਿਆ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੈਸੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਅਰਪਣ ਕੀਆ, ਕਿਆ ਹਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਜਾਨ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਹਮ ਜੋ ਕਰਨੇ ਕੋ ਹਮ ਹਮ ਮਨ ਆਤਾ ਹੈ ਹਮ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਹਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਤੁਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅਰਪਣ ਕਰਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਐਸੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਇੱਛਾ ਥਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਇੱਛਾ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਕਿਹਾ? ਬੋਲਾ ਲੋ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ ਸੇ ਮੇਰਾ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਛਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਬਣੂੰਗਾ। ਕਿਆ ਆਪ ਔਰ ਹਮ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਕਾ ਇੱਛਾ ਕੇ ਲਿਏ ਹਮ ਸੇਵਕ ਬਣੂ? ਤੋ ਯੇ ਬੜੇ ਮੌਕਾ ਆਜ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮੇਂ ਮਿਲਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸਵਾਲੋਂ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ, ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੋ ਲਿਆ ਬ੍ਰਦਰ, ਦੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਤੀਨ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਕਬ ਲਿਆ ਸਿਸਟਰ, ਕਬ ਲਿਆ ਬ੍ਰਦਰ? ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭ ਕਲੀਸੀਆ ਮੇਂ ਜਬ ਤੇ ਮੈਨੇ ਲਿਆ, ਮੈਨੇ ਜਬ ਬੱਚਾ ਥਾ ਮੈਨੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਜਬ ਸੱਚਾਈ ਢੂੰਢਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੀਸਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਲੀਸਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਬ ਵੀ ਕਹੀਂ ਵੀ ਕਲੀਸਾ ਗਿਆ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਥੇ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ, ਆਪਣੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਉਸ ਕਲੀਸਾ ਮੇਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਕਲੀਸਾ। ਅਭੀ ਯੇ ਕਲੀਸਿਆ ਮੇਂ ਤੁਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਯੇ ਕਲੀਸਿਆ ਮੇਂ ਆਪ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਯੇ ਅੱਛਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾ, ਤੋ ਵੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਯਹਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਪਾਸਟਰ ਉਧਰ ਹੀ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਉਧਰ ਉਧਰ ਵੋ 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 ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਇਧਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਚਲੋ ਲਿਆ, ਤੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਮੇਂ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਲਿਆ, ਉਧਰ ਛੋੜ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਕਲੀਸਿਆ ਗਿਆ ਤੋ ਉਧਰ ਲਿਆ, ਤੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਭੀ ਹਮ ਸੱਚਾਈ ਮੇਂ ਆਇਆ ਬ੍ਰਦਰ, ਹਮ ਤੀਨ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਚੌਥਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ? ਇਹ ਚੌਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਲੇਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਲੇਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਗ। ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੇਤਾ ਬੱਚੇ ਕੇ ਲਿਏ, ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਕੇ ਸਦਸਿਆ ਬਣਨੇ ਕੇ ਲਿਏ, ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਕੇ ਸਦਸਿਆ ਬਣਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਵੋ ਪਾਪ ਕਾ ਸ਼ਮਾ ਕੇ ਲਿਏ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਯਾ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੇਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋ ਅਰਪਣ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ। ਯੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਅਸਲੀ ਬਪਤਿਸਮ ਵੋ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਜਾਣਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਾਚਾ ਜਾਣਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਵਾਚਾ ਕਿਆ ਮੈਂ ਬਣੂੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਯੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਗੇ ਆਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੈਸੇ ਯੀਸ਼ੂ ਗਲੀਲਿਆ ਸੇ ਆਇਆ ਔਰ ਯੋਹੰਨਾ ਕੋ ਢੂੰਢ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਯਰਦਨ ਮੇਂ ਬੋਲਾ ਲੋ ਪਿਤਾ ਆਪਕੇ ਇੱਛਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਲੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ। ਤੋ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ ਅਗਰ ਆਜ ਜਬ ਆਪ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਯੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਵਸਰ ਹੋਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਯੀਸ਼ੂ ਕੀ ਜੈਸੇ, ਬੜੇ ਭਾਈ ਕੀ ਜੈਸੇ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਸੇ ਪਿਤਾ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੋ ਲੋ ਪਿਤਾ ਆਪਕੇ ਇੱਛਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੂੰ। और सभी आप बपतिस्मा ले लो। और एक और सवाल आता है, थोड़े लोग पूछता है कि ये बपतिस्मा के बारे में, कि बपतिस्मा की बात में ब्रदर क्या मैं यीशु की तरह मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ? मैं तो इतना छोटा आदमी हूँ, मैं तो इतना पापी हूँ, क्या मैं पूरा कर सकता है? यीशु तो जीत लिया, क्या मैं जीत सकता है? अगर इसका सवाल है तो एक जवाब यीशु से सुन लो, मार्कुस 10वां अध्याय और 39वां वचन, मार्क 10:39
उन्हें उसने आख्या साथो हो सकता है। यीशु ने उन्होंने आख्या ओ प्याला जेड़ा मैं पीना है तुसी ता पियोगे अते ओ बपतिस्मा जेड़ा मैं लेना है तुसी लवोगे।
लेकिन तू लहोगे नहीं, लाओगे पियोगे, क्योंकि ये सवाल नहीं है। प्रभु बोलता है जो प्याला मैं पी रहा हूँ आप जरूर पियेंगे, जो बपतिस्मा में ले रहा हूँ आप जरूर लेंगे। प्रभु बोलता है, क्यों? अभी देखो, एक तरफ शैतान बोलता तू लेगा तू पूरा करेगा तू लेगा क्या? शैतान बोलते रहेगा एक कोने में, दूसरे कोने में प्रभु बोलते तू जरूर लेंगे, आप कौन विश्वास करेगा, शैतान की बात या प्रभु यीशु? यही बात। तीसरी और आखिरी सवाल आता है कि मैं तो पापी हूँ, ज्यादा पाप किया है ब्रदर, मैं तो एक काम करता हूँ, मैं बपतिस्मा अगले साल लूंगा, क्योंकि थोड़ा बुराई तो सफाई करके मैं आता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ ब्रदर, मेरा पाप के बारे में आप सुन लिए तो आप बहुत तंग हो जाएगा, ऐसी बात है। तो उसके लिए भी एक सवाल का जवाब है निर्गमन, निर्गमन में पढ़ेंगे 20वां अध्याय 26वां वचन,
तुसी मेरी जगवेदी उत्ते पौड़ियां नाल ना चढ़ो पाई किते तुहाडे नंगेज उत्ते उस उत्ते खुल ना जावे।
हमेशा प्रभु पिता परमेश्वर जब बोलता है तो तुरंत नहीं समझ लेते, क्योंकि तजवीरी भाषा में बात करेगा। अभी बोल रहा है जो कोई मेरे वेदी को अभी आता है, पवित्र वेदी को आता है, सीढ़ियों के ऊपर मत आओ, सीढ़ी ना, सीढ़ी के ऊपर मत आओ। इसका मतलब क्या है कि मैं आता हूं अभी बलिदान चलाने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा इंप्रूव हो जाए, थोड़ा ऊपरी
स्टेप बाय स्टेप
ऊपरी कदम लेंगे। लेकिन प्रभु बोलता है नीचे से ही आप नंगा है, ऊपर आने तक भी आप नंगा रहेंगे मेरे सामने। आपके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप कौन से किस्म के आदमी हैं, क्या क्या पाप करते हैं, क्या क्या कमजोरी, अच्छी तरह जानते हुए भी आपको बुलाया, अच्छी तरह जानते हुए भी बुलाया इसके लिए मैंने बुलाया, क्योंकि तुम ऐसा पापी है, क्योंकि तुम ऐसा पापी है, तुम नमूना बनना है बाकी तुम्हारी तरह का पापी हो दुनिया में, तो इसके लिए भूमिका निभाने के लिए मैं आपको बुलाया है। तो ऐसा मत सोचो कि आप ऐसे बदलेंगे वैसा बदलेंगे, कुछ बदलने की जरूरत है, जैसा आप है आओ, क्योंकि ये कर्मों की बात नहीं, ये दिल की बात है। क्योंकि प्रभु पूछता है मेरा बेटा आपका दिल मेरे के दो, वचन में पढ़ लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात, नीति वचन कहता 23:26
हे मेरे पुत्र अपना दिल मेनू दे।
देखो परमेश्वर बोलता है हे मेरे पुत्र अपना दिल मेरे को दे। ये शब्दों कौन पहला सुना? उनका इकलौता पुत्र, जब सुना क्या बोल के आया? लो पिता आपका इच्छा करने के लिए मैं आया हूं। क्या आपको सुन रहा है वो गूंज? क्या आपको कान पे पड़ रहा है लो मेरा पुत्र आपका दिल मेरे के दो? अगर आपको सुन रहा है तो आओ और आपका दिल दे दो। इस वाचा में जो आज हम सिर्फ एक तस्वीरिक रूप में करने वाला है पानी में, लेकिन यहां से शुरू होगा वो वाचा को निभाना, कब तक? अंत तक, मरते दम तक। आप दिखाना पिता परमेश्वर की आप कितने तरह प्रभु यीशु की तरह है, आपका रूप कितना प्रभु यीशु की जैसे है। ये तो बपतिस्मा है, ये तो एक का बपतिस्मा, एकमात्र बपतिस्मा है। पिता परमेश्वर आपसे आपको एक बहुत बड़ा सुनहरे मौका दे रहा है, आपको आपको बुला रहा है, आपका दिल मांग रहा है। आप फैसला करो और हम अभी बपतिस्मा लेने की जगह को जाऊंगा, वहां हम तीन सवाल आपसे पूछूंगा, आप सवाल का जवाब हाँ या ना आप दे सक बोल सकते हैं, और उसके बाद जो कोई फैसला करता है अपना वाचा बांधने के लिए, वहां तो हम बपतिस्मा देंगे। परमेश्वर ही आपके जिंदगी में सहारा रह जाए और आशीर्वाद करें। आमीन।